قال الله وخضعوا تي تو خضوا تعرض تي قال الله ألا تلاني فرمايا ألا تلاو دين فرمايكا کہ ان کے جواب میں ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دنیا کے اندر انی منزل حالیکم کہ یعنی اب آپ کو یہ بات یاد کرائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن یہ بات ہو رہی ہے کہ یاد کرو پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اتار دیتا ہوں اتارنے والا ہوں اس کو تم پر لیکن ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں اتارنے سے وہ تو والا کلی شے قدیر ہے تو پھر ان کی اس دعا کے اوپر اے عیسیٰ آپ کی اس دعا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نازل کرنے والا ہوں اس کو آپ کی طرف لیکن اس کے بعد فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد مائدہ اترنے کے بعد بعدو کا مطلب کیا مائدہ اترنے کے بعد مِنْكُمْ تم میں سے اِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهُ اُعَذِّبُهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ تو بے شک پھر میں اس کو وہ عذاب دوں گا کہ کسی کو میں نے وہ عذاب نہیں دیا وہ جہان والوں میں کبھی نہیں کسی کے اوپر ویسا عذاب آیا جیسا کہ ان کو عذاب دوں گا جو نہیں پھر مانیں گے اس لیے کہ دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی معجزے اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہی دکھا دیے معجزے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو سب کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ پہ نہیں وہ تیسے ہی انہوں نے دکھایا لیکن جب کوئی قوم ڈیمانڈ کرتی ہے معجزوں کی جیسے سمود نے ڈیمانڈ کیا تھا صالح علیہ السلام سے کہ ہمیں دکھائیں کہ اونٹنی پہاڑ کو پھاڑ کے نکلے اور وہ حاملہ اونٹنی ہو پھر وہ بچہ دے پھر وہ ایسے اچھا جب وہ اونٹنی پھر نکل آئی اور پھر بھی نہیں مانے تو پھر ان کے پر سزا آئی جب کوئی قوم کسی معجزے کو مانگتی ہے خود منہ سے مانگ کے لیتی ہے اس کے بعد پھر اللہ دکھا دے اور وہ نہ مانے نا تو پھر ان کے پر سزا بہت بڑی آتی اور ان کو بھی یہاں پہ یہ کہہ دیا گیا اچھا اب کیا وہ مائدہ اترا تھا یا وہ نہیں اترا تھا اس کے بارے میں ہمیں اوتھینٹک کچھ بھی نہیں پتا بعض کہتے ہیں کہ اترا تھا اور اس کے اوپر یہ یہ چیزیں تھیں اور پھر انہوں نے اس کے اوپر سے کھایا بھی اور پھر اس کے اوپر سے حکم یہ تھا کہ آپ نے اس کو سٹور نہیں کرنا وہ انہوں لیکن انہوں نے کیا کہا پتہ نہیں ہے ابھی ملے کہ نہیں ملے تو انہوں نے چوری کر کے رکھنا شروع کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ اٹھ گیا اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آیا یہ بھی دیکھی نہیں ہے اسرائیلی روایات ہیں نا لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مائدہ نہیں اترا تھا کیوں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا لی تھا کہ پھر اگر کوئی نہ مانا تو پھر وہ عذاب آئے گا نا کہ جو کبھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو انبیاء کبھی بھی خود نہیں مانگ سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے پھر بھی یہ معجزہ دکھا دیا جائے جبکہ اتنے سے پہلے تو معجزے دیکھ چکے تھے سب لوگ تو اگر یہ معجزہ دکھا دیا جاتا اور پھر نہ کوئی مانتا تو پھر کیا ہوتا تو اس لیے جس نے ماننا ہوتا وہ معجزوں کے بغیر ہی مان جاتا ہے جس نے نہ ماننا ہو پھر اس کے پاس وہ بہانے انہوں نے اس کو بھی جادو کہہ دینا تھا پھر تو یہ اس لیے ہمیں یہ بات ایک اور بھی حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہی اتراؤ یہ تو ان کی بہت زیادہ کچھ اس کے بارے میں نہیں ملتی ورنہ تو بہت شور مچتا کہ دیکھو ہمارے تو مائدہ اتر گیا تھا یہ اتنا زیادہ نہیں اس کا شور مچتا دوسرا ایک مسند احمد کی ایک روایت ہے جسے بھی ہمیں تھوڑا سا یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید مائدہ نہیں اترا تھا وہ روایت یہ ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ نے فرمایا تم بالکل سچا وعدہ کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم سچا وعدہ کر رہے ہیں ہم آپ پر ایمان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اے نبی اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیتا ہوں لیکن اگر اس کے بعد ان لوگوں نے کفر کیا تو میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دیا ہو اس پہ بھی اگر آپ چاہیں تو پھر بھی بنا دیتا ہوں لیکن اگر آپ اس سے باز آ جائیں یہ مطالبہ نہ کریں اور یہ چیز مطلب نہیں کرتے تو دوسرا آپشن کیا ہے اگر یہ یعنی اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے कि मैं आपके लिए, मैं इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाजा खोल देता हूं। मैं इनके लिए क्या करता हूं, तौबा और रहमत का दरवाजा खुला रखता हूं। यानी अगर तो ये पहाड़ी सोने की बनवानी है तो ठीक है, लेकिन फिर है कि फिर अगर ना माने तो फिर इनके पर आजाद। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहाड़ी तो सोने की ना बने लेकिन तौबा रहमत का दरवाजा कयामत तक के लिए खुला रहे, या इंसान की मौत तक के लिए खुला रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, फरमाया अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह माफ फरमा, तौबा रहमत का दरवाजा बस खोल दे। आपने ये चूज किया, खुद चूज किया कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए ये दरवाजा खोल दे, ये खुला रखना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चॉइस पर ही आज ये है कि हर इंसान के लिए मौत तक ये दरवाजा खुला रहता है, मेरे और आपके लिए भी खुला हुआ। अल्लाहु अकबर। जब जान निकलने लगती है ना तो पहले पैरों की तरफ से निकलती है और फिर ऊपर से निकलती है, तो जब मौत की गशी तारी होने लगे उस वक्त तक ये दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह। तो इंसान जल्दी करे इसकी तरफ, इसलिए कि आजकल जवान मौतें बहुत हो रही हैं, बहुत आप सुन रहे होंगे जवान मौतों का, अचानक मौतें हो रही हैं, उनका इंसान सोच ही नहीं सकता। तो हम नहीं जानते, अगर हमने देर कर दी तो ये ना हो कि ये तौफीक ही ना मिले। तौबा क्या है, अल्लाह की तरफ पलट आना, पलट आओ अल्लाह का दर खुला हुआ। तो इससे पहले कि ये दर बंद हो जाए, मौत का आना इस दरवाजे को बंद कर देगा हमेशा के लिए। तो इससे पहले कि ये बंद हो जाए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है पलट आने की। जो माफ करने वाला है उसी ने दरवाजा खोला हुआ है कि आ जाओ तौबा कर लो, पलट आओ वापिस आ जाओ, मेरी तरफ मोड़ आओ। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए गनीमत जानिए, लौट आए अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हाँ उसी के लिए जगह है जो इसी जिंदगी में इस चीज को रियलाइज कर देता है। मर के तो सबने ही कह देना कि हाँ काश एक दफा दोबारा चले जाए, हाँ काश मुझे मौका मिल जाए, हाँ काश ऐसा हो जाता, और फिर काश काश ही रह जाए। तो इंतजार ना करें, अभी वक्त है, पता नहीं है कब खात्मा हो जाए। तो हमें ये दूसरी बात मिलती है, ये हो सकता है कि फिर उन्हें इस चीज से दस्तरदार हो गए, इसको गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए। बाहर कैफ ये सारी बातें करके अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें याद दिलाई कि अल्लाह ताला तो इस पे भी तैयार, पता नहीं उतरा या नहीं उतरा, लेकिन अगर अल्लाह ने उतारा या अल्लाह ताला ने जो इतने मौजज़े दिखाए ईसा अलैहि सलाम को और फिर नेमतें जो इतनी दी ईसा अलैहि सलाम को, उसके बाद एंड में क्या बात है। तो सारी बातें हो गई, अब उसके बाद क्या, ये है क्लाइमेक्स जो बात है। इज़ क़ाल अल्लाहु, इन सारी बातों के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा ईसा अलैहि सलाम से, या ईसा इब्न मरियम, है ईसा इब्न मरियम, क्या आपने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो, दो खुदा, मुझे भी खुदा बना लो मेरी माँ को भी खुदा बना लो, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़ के हमें खुदा बना लो। अब देखें, अब पूरी दुनिया के सामने इनके कितने फॉलोअर हैं, ईसाई कितने ज्यादा है इस वक्त, पूरी दुनिया का नंबर वन पे जो टॉप पे रिलीजन है ना, इसके मानने सबसे मानने वाले सबसे ज्यादा दुनिया में वो ईसाई हैं। ये आज के वक्त की बात है, और कितने उस वक्त से आज तक आ चुके, वो सब खड़े हुए हैं। और जिनका ये अकीदा था कि ईसा खुदा है, खुदा का बेटा, नाउज़ु बिल्लाह, या उनको खुदाई के अंदर कोई शिरकत है, या उनकी माँ भी खुदा की, ट्रिनिटी में तो माँ भी है ना, माँ बेटा और बाप, ये खुदा है तो एक उसका बेटा है, एक अल्लाहु अकबर। तो ईसा अलैहिस्सलाम की जो ये पेशी होगी ये कितनी मुश्किल होगी, और कितना उनके लिए ये चीज टफ होगी कि उनसे सवाल किया जा रहा है जबकि उन्होंने तो कहा भी नहीं था। उनकी हम्बलनेस आप देखेंगे, वो कहते हैं अल्लाह सुभानक, अल्लाह तू पाक है, ये नहीं कि अल्लाह मैंने कब कहा, मैं कहा इनको कहने वाला नहीं, सुभानक से बात शुरू की, अल्लाह तू पाक, हर ऐब से पाक है या अल्लाह, मा यकूनु लिया नकूला मा लैसा बी हक। देखिए आप अंदाज, आप सिर्फ अल्लाह ताला ने दुनिया में बता के ना, सिर्फ इट नॉट जस्ट कि वो डिनाई कर रहे हैं इसको, एक बात होती है ना कि उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं मानते कि मैंने तो नहीं कहा अल्लाह, ये भी बात हो सकती थी, मैंने नहीं कहा अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, मुझे मेरी क्या मिजाल है कि मैं ऐसी बात कहूं, मेरा क्या हक बनता है, मुझे कैसे जेब देता है, मां यकून ली, मेरे लिए ये नहीं है, यानी मुझे कहां से ये हक हासिल है या मुझे कहां से ये जायज है मेरे लिए, या मेरी क्या मिजाल है अल्लाह कि मैं ऐसी बात कहूं जिसका मुझे कोई हक ही नहीं कहने का, मेरा ये हक नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूं। अल्लाह अकबर, ये मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो, और ये सदियां गुजरती जा रही हैं और वो उनको खुदा बना के बैठे हैं। आप सोचें, अंदाजा करें कि उस मखलूक का हाल क्या होगा जो ये सब सुन रही है, और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां इसी अकीदे के पीछे लगा दी होंगी, हशर के मैदान में उनकी हालत क्या हो रही होगी, वो ये मुकालमा सुन रहे हैं अल्लाह ताला और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान, और वो देख रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम की बेचारगी, और देख रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम की आजजी, और देख रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम कितने पावरलेस हैं, उनकी क्या हैसियत है कि वो एक बंदे ही हैं अल्लाह के, वो खुदा की किसी किसी भी उसकी सिफत या किसी भी उसकी मिल्कियत में शामिल नहीं है। उनका हाल क्या होगा जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि वो तो जाके हमें वहां बचा लेंगे, उनका हाल क्या होगा जो ये सोचे बैठे हैं कि इन्होंने तुम्हारे गुनाह अपने सर ले लिए और सूली चढ़ गए। सुनाए ये आयतें उन लोगों को जो क्रिश्चियन है कि हमारा तो कुरान ये कहता है, कई लोगों के सामने जब ये आयतें सुनाई गई तो वो हक्का बक्का रह गए कि ऐसा होगा, वो जिसके दिल के अंदर अल्लाह ताला बात डाल दे। अल्लाह अकबर, लेकिन वो किस कदर मुश्किल वक्त होगा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया जाएगा, और इसके अंदर ये कि आपने कहा था, और जबकि वो ये जानते हैं ये कितना बड़ा शिर्क है, अल्लाह मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ, ना मेरी क्या मिजाल है ये बात कहने की, इन कुंत कुलत हो फकद अलिमता, अल्लाह अगर मैंने कहा होता तो तू जानता होता, क्योंकि अल्लाह मुल्कु यूब आगे आ रहा है ना, अल्लाह तू तो गैबों का जानने वाला, अल्लाह अगर मैंने कहा होता तो तुझे जरूर पता होता, तालमु मा फी नफ्सी, तू तो हर चीज जानता है जो मेरे नफ्स में है, अगर ऐसी कोई चाहत होती है ऐसा कभी कहा होता अल्लाह तुझे पता होता। अब देखिए वो बाज जगह पे आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त यानी अपनी आजी की इंतहा पे होंगे कि वो कह रहे हैं अल्लाह तुझे पता है मेरे दिल के अंदर क्या है, अल्लाह आलमु मा फी नफ्सी, मैं तेरे इल्म का मुझे नहीं पता, मुझे कुछ मैं तेरे इल्म को नहीं जानता, लेकिन तू तो मेरे सब कुछ जानता है, अंदर बाहर को जानता है जो मेरे अंदर, यानी फिर वो एक तरह से बता रहे हैं कि मैं कैसे इलाह हो सकता हूँ, मैं कैसे खुदा हो सकता है, तुझे तो मेरा सब कुछ पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, इनका अंत अलामुल गुयूब, तू तो हर गैबों का सारे गैबों का तू बहुत खूब जानने वाला है, तो मैं कैसे खुदा हो सकता हूँ। अब देखें उनका तो किस्सा ही खत्म हो गया ना, उनका तो पत्ता ही कट गया जिन लोगों ने ये अकीदा रखा था कि ये भी खुदा है, आप देख लें वो बेबस है। अल्लाह फिर वो आगे कहते हैं मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी भी, अब देखो कि जो लोग अपने पैगंबर की बात का उनका पैगाम को सही नहीं मानते और उनके बाद गलत काम करते हैं, उनके पैगंबर को भी एक दिन कयामत के दिन जब पूछा जाएगा तो फिर देखो कैसे कैसे उनको भी एक यानी जवाबदेही तो देनी पड़ रही है ना, एक उनका चाहे दिखाया इन लोगों को जा रहा है ताकि वो देख लें कि ये कितने बेबस हैं, लेकिन फिर भी एक पैगंबर की तो पेशी हो गई ना, तो जो लोग जो उम्मत ये चाहती है कि हमारे पैगंबर को भी हम उस दिन सुर्खरू करें और हम उनको प्राउड करें कि वो हमारे ऊपर फखर करें अपनी, तो वो उम्मत अपने काम भी तो सही करे ना फिर। वो कहते हैं अल्लाह मेरे लिए जो तूने मुझे हुक्म दिया था मैंने वही इनसे कहा। मैं मा कुलतु लहुम इल्ला से मतलब क्या है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया इसमें बहुत हसर आ जाता है कि और कोई इलाह है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। एक ये भी हो सकता था ना अल्लाह इलाह है बस, तो वो उसमें एक चांस है कि और भी कोई हो सकता है, लेकिन जब आप कहते थे ला इलाह इल्लल्लाह तो फिर नहीं कोई भी इलाह, फिर एक को सिर्फ आपने सेपरेट किया सिवाय अल्लाह के। इसी तरह यहाँ पे मा कुलतु लहुम मैंने नहीं इनको कहा कुछ भी नहीं और कहा, यानी तीसरी कोई बात कही नहीं, इल्ला मा अमरतनी भी सिवाय उसके जो तूने मुझे हुक्म दिया था ना, मैंने सिर्फ उतना ही पहुंचाया, सिर्फ वही बातें इनको कही। इससे पता चलता है ईसा अलैहि सलाम ने इनको ये नहीं कहा है कि मैं कोई खुदा का बेटा हूं, मैं कोई ये हूं, ये झूठ है जो सब इन्होंने बनाए हैं झूठ। और मैंने क्या कहा वो भी वो उस दिन बताएंगे, अन्य अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि अल्लाह ही की इबादत करो, और इबादत क्या होती है, इताअत पूरी आजजी के साथ, जिसमें मोहब्बत भी हो, जिसमें फरमा बरदारी हो, यानी इताअत आजी मोहब्बत ये सब इबादत का जुज है। वो कहते हैं कि मैंने तो इनको कहा था कि अल्लाह की इबादत करो, इन्होंने किसकी इबादत शुरू कर दी, और वो अल्लाह जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, मैंने इनको ये कहा। लेकिन कुरान बता रहा है ये बात, हमें ढूंढने की कहीं और जरूरत नहीं कि ईसा अलैहि सलाम ने इनको पता नहीं क्या कह रहे थे जो ये पीछे से इस तरह हो गए, नहीं, कुरान बता रहा है कि ईसा अलैहि सलाम ने हक बात इनको कही थी कि रब्बी से क्या पता चलता है वो मेरा रब है, मतलब क्या, यानी मैं तो गुलाम हूं, मैं तो एक अदना बंदा हूं उसका। उन्होंने कहा बेटा होना तो दूर की बात है, उन्होंने कहा किसी चीज की भी ये चीज का दावा किया कि मेरे पास कुछ इख्तियार हैं, कोई ऐसी स्पेशल पावर्स है मेरे पास, कोई मेरे पास भी कोई अथॉरिटी है, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा उस दिन। वो तो कह रहे हैं मेरा रब है वो, और किसी को रब मान लेने का मतलब है अपने आप को गुलाम मान लेना, बंदा मान लेना। तो जैसे तुम्हारा वो रब है इसी तरह मेरा भी वो रब है, मेरे को कोई वह नहीं है कि मेरा कोई स्टेटस कहीं और है कि मैं कुछ और चीज हूं उसके, हाँ कोई और मेरा कोई कोई और रिश्ता है उसके साथ, नहीं। और देखिए इसके अंदर ना सब एक है, जो बंदा होने में तमाम इंसान एक ही हैं, चाहे वो पैगंबर हैं चाहे वो दूसरे इंसान हैं, सब अल्लाह के बंदे ही हैं। हाँ अल्लाह के हाँ किसी का मर्तबा मकाम ऊंचा है, लेकिन उससे उसका रिलेशनशिप अल्लाह के साथ डिफरेंट नहीं हो जाता कि वो कुछ और बन गए हैं अल्लाह के, कोई नाउज़ बिल्ला कोई बेटे कोई 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 और ज्यादा कुछ उसके किसी और रिश्ते में आ गए, नहीं, रिश्ता बंदे और रब का ही रहेगा। हाँ बंदों में कोई ज्यादा बढ़ के मर्तबे वाले होंगे कोई कम वाले होंगे, ठीक है। वकुंतु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और था मैं उन पर गवाह जब तक रहा मैं उनमें, जब तक मैं उनके अंदर था अल्लाह मैं इनके ऊपर गवाह रहा, मैं इनके ऊपर निगेबान रहा, मैं इनको देखता रहा, मैं इनको वॉच करता रहा। फलम्मा तवफ्फैतनी कुंता अलैहिम कुंता अंत अंत रकीब अलैहिम, तो तू उनके ऊपर निगेबान, अल्लाह जब मैं दुनिया से तूने मुझे उठा लिया। अच्छा अब यहां पे तवफ्फैतनी का मतलब कादियानी लोग इसको ये कहते हैं कि देखा वो तो फौत हो गए, और यहाँ पे देखो तवफ्फैतनी का आया लफ्ज, वो जब वो कहते हैं कि मैं फौत हो गया तो अल्लाह तू पीछे उनका निगेबान था। खुदा के बंदो आप देखें यहाँ पे किस वक्त बात हो रही है, ये डायलॉग कब हो रहा है, कयामत के दिन, कयामत के दिन तक पहुंचने तक ईसा अलैहि सलाम फौत भी तो होंगे ना या नहीं, अभी नहीं फौत हुए लेकिन फौत होंगे ना आके, तो वो कहते हैं कि नहीं वो फौत हो चुके हैं, देखा ये लोग कहते हैं कि नहीं वो उठाए गए वो तो फौत हो चुके हैं, वो यहां से साबित करते हैं, और फिर उसके बाद अपने मिर्जा कादियानी को अपना मसीह मौऊद कहते हैं कि वो दोबारा फिर उनकी शक्ल में आए दूसरे मसीह बन के। और इसी तरह बाज ऐसे लोग भी जो कि हदीस को नहीं मानते या अपनी सेलेक्टिव अहादीस को मानते, वो भी यहां से ये ले लेते हैं कि ईसा अलैहि सलाम तो फौत हो गए, और देखो ना वो जाके वहां पे उस वक्त कहेंगे भी कि या अल्लाह जब मैं फौत हो गया हुआ था तो पीछे से तू इनका निगेबान था, कि तू इनको देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता फिर कि क्या हुआ मेरे पीछे से। तो इनमें वो लोग जो गांधी साहब को बहुत सुनते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं, वो भी देख लेंगे, उनका भी यही मौकफ है, वो भी इस चीज को कहते हैं कि नहीं जी ईसा अलैहि सलाम ने नहीं आना, वो फौत हो चुके हैं। जबकि कुरान को पहले तो बताए ना कि हमने कुरान को समझना कहाँ से है, गांधी साहब से समझना है या किसी और स्कॉलर से समझना है या कहाँ से समझना है या किसी हदीस से समझना है, बताएं। जब अहदीस इतनी ज्यादा हैं कि तवातुर, यानी तवातुर मतलब ये होता है यानी इतने ज्यादा सहाबा ने रिवायत की हो कि उनका झूठ पे मिलना नामुमकिन है, जब इतनी सारी अहादीस हैं ईसा अलैहि सलाम के दोबारा नजूल की, तो फिर हम इस हकीकत को कैसे डिनाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जमाना करीब है कि ईसा बिन मरियम तुम्हारे दरमियान एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे, वो सलीब को तोड़ देंगे, वो खिंजीर को मार डालेंगे और जिजिया खत्म कर देंगे, उस वक्त माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि उसे लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, उस वक्त का एक सज्दा दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर होगा। ये बुखारी की रिवायत है, मगर इनको क्या बुखारी हो या कुछ भी हो उनको नहीं फर्क पड़ता, सबको झुठला दिया। सूरह जुखरुफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहि सलाम जो है ये कयामत की एक निशानी, सूरह जुखरुफ आयत 61 आप नोट कर लीजिए, ईसा अलैहि सलाम के पीछे बात आ रही है, और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु ला इल्मुल लिसाअति, वो है कयामत की निशानियों में से एक निशानी, लिहाजा तुम कयामत के आने में शक ना करो। ठीक है, इसके अलावा मुस्लिम में भी इतनी सारी रिवायात हैं जो ईसा अलैहि सलाम की आमद पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम ईसा बिन मरियम उतरेंगे, हुकूमत करेंगे, अदलो इंसाफ कायम करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, जिजिया नहीं लेंगे, जवान ऊंट को छोड़ देंगे, इस पर कोई मेहनत नहीं करेगा यानी उसे कोई काम नहीं लेगा, लोगों के दिलों से कीना बोझ और हसद जाता रहेगा, ईसा अलैहि सलाम लोगों को माल देने के लिए बुलाएंगे लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, नहीं माल लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई सदका खैरात नहीं लेगा, सबके पास इतनी फरागी होगी, इतना माल होगा। और भी बहुत सारी अहादीस है, ईसा अलैहि सलाम का हुलिया बताया गया किस हुलिये में उतरेंगे, वो जगह बताई गई कहाँ पे वो उतरेंगे, वो आके दुनिया में क्या क्या काम करेंगे वो बताए गए, लेकिन सारी अहादीस, चलो एक होती बंदा कहता है कि भाई चलो एक के अंदर कोई गलत फहमी थी किसी को हुई या क्या, बुखारी की है, मुस्लिम की है, यानी ये तो सही है इनकी अहादीस है, और फिर इतनी ज्यादा कसीर तादाद में इतने सारे रावियों के साथ है, फिर उसके बाद क्या ना, देखो जी यहाँ पे तो लिखा हुआ है जब ईसा अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं कि जब मैं फौत हो गया था, तो एक तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ ये आयत अकीदा लेने की नहीं है, यहाँ पे तो कयामत के दिन का डायलॉग चल रहा है, बात ये है ही नहीं। नंबर टू बात, तवफ्फैतनी का मतलब वफ़ाया से है, उठा लिया जाना, पूरा पूरा किसी चीज को ले लेना, तो जब तवफ्फैतनी का लफ्ज फौत होने के लिए भी आता है और पूरा पूरा उठा लेने के लिए भी आता है, ले लेने के लिए भी आता है, जब ईसा अलैहि सलाम के ऊपर वो ये उन्होंने इल्जाम लगा के उनको सलीब पे चढ़ाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उनको पूरा का पूरा जिस्म और रूह समेत उठा लिया था, और हमारा ये अहले सुन्ना वल जमा का ये अकीदा है कि ईसा अलैहि सलाम ने वापस आना है, जो इस अकीदे से हट के कोई बात करता है वो अहले सुन्ना वल जमा के अकीदे के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि अहले सुन्नत का तो अकीदा यही है। ठीक है, वो अपनी एक अलग 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करना चाहे तो फिर ठीक है। तो एक तो पहली बात ये कि वो अगर ये कहती हैं कि जब अल्लाह तूने मुझे उठा लिया था तो फिर मुझे नहीं पता पीछे इन लोगों ने क्या किया, पीछे इन्होंने आपको पता बाद में एक बादशाह आया था, वो पहले यहूदी था, फिर उसने बहुत टॉर्चर किया ईसाइयों को, बहुत टॉर्चर किया, और उसके बाद एक दिन वो कहीं जा रहा था, उसने कहा कि मेरे शाऊन था शायद उसका नाम, शाऊल या शाऊन कुछ इस तरह से नाम था, बाहर गया वो कहीं जा रहा था, उसने कहा मैंने आसमान से कोई बात, इसने घड़ी के आसमान से देखा एक रोशनी आई है, और फिर उसने कहा रोशनी ने, मैंने कहा क्या हो तुम, तो उसने कहा मैं ईसा हूं, और फिर उसने कहा कि तुम मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हो, तो फिर उसने कहा कि अब मैं ईसाईयत कबूल करता हूँ, तो उसने अपना नाम बूलस रखा था, फिर बाओ बा वाओ लाम सीन, बोलस उसका नाम फिर था। उसने अपना नाम फिर ये चेंज करके क्रिश्चियन नेम रखा। फिर उसने वो इस क्रिश्चियनिटी के अंदर ये ट्रिनिटी का अकीदा और इतनी चीजें उसने निकाली, कई इबादत वो खत्म कर दिया, कई को खुद ही शुरू कर दिया, कई हलाल हराम कर दिए, कई हराम हलाल कर दिए, खंजीर को जायज कर दिया, ये सारी चीजें फिर उसने बाद में की। ठीक है, तो ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं कि मुझे जब तूने उठा लिया था तो मुझे नहीं पता अल्लाह इन्होंने पीछे से क्या किया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता, तो हौज़े कौसर पे होंगे, देखेंगे, सोचेंगे ये मेरे उम्मती हैं, तो फरिश्ते आगे कहेंगे ये आपके उम्मती नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता इन्होंने आपके पीछे से कितनी बिदतें, आपके दीन में कितनी नई नई चीजें ईजाद कर ली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको परे कर देंगे फिर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई आलिमुल गैब नहीं, वो आके देख तो नहीं रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ईसा अलैहि सलाम भी आके तो नहीं देख रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको अल्लाह ने उठा लिया। और अगर उनको फौत करने का भी अगर हम मानना लेते हैं, तो उन्होंने फौत भी तो होना है, जब आएंगे तो फौत हो ही चुके होंगे, जब कयामत में पहुंचेंगे फौत हो चुके होंगे, तो उनको नहीं पता कि उनके पीछे से फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इस चीज को यहां से हम अकीदे का मसला बना के यहां से कोई अकीदा नहीं दे सकते, बल्कि इसको इसी पे रहने देना चाहिए कि जो डायलॉग अल्लाह ताला का ईसा अलैहि सलाम के साथ हो रहा है। और उस वक्त वो कहते हैं अल्लाह जब तूने मुझे उठा लिया था तो मैं नहीं जानता फिर क्या हुआ पीछे से, तू ही फिर निगरान था इनके ऊपर। अल्लाह कुल्ली शहीन शहीद, अल्लाह तो हर जमाने का और पिछले और अगले हर चीज का तू ही गवाह है। इन तो अदिब हूं, अब देखें जरा ईसा अलैहि सलाम की ये भी एक यानी इस कदर जबरदस्त आयत है ना। इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। अब ईसा अलैहि सलाम जब ये बोल रहे होंगे तो क्या हाल होगा कि जब वो खुद कहेंगे अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो तेरे ही बंदे हैं। अल्लाह ठीक है इनका जुर्म बहुत बड़ा है, मैं नहीं कुछ कर सकता और मैं नहीं कुछ कह सकता, ना मेरा कोई इख्तियार है। अल्लाह अगर तू इनको अजाब देता है तो आपको पता है ना, एक बात उलमा लिखते हैं बिल्कुल सही बात, पता नहीं किसी को समझ आए या नहीं आए, लेकिन ये हक बात है, किसी को समझ आ जाए तो बस बताने के लिए, कि अगर अल्लाह ताला सारी मखलूक को जहन्नुम में भी डाल देना तो ये उसका अदल है, ये उसका अदल है, जुल्म नहीं है, ये उसका अदल है, क्योंकि मखलूक में से कोई उसका हक नहीं अदा कर सकता। और अगर अल्लाह ताला किसी को जन्नत में डाल दे तो ये उसका फजल है, उसकी रहमत है, ये भी उसका हक नहीं है। समझ आई? तो अल्लाह सारी मखलूक को भी जला दे तो उसका अदल ही है, हमारा हक नहीं कि हम कहेंगे अल्लाह हमें क्यों तूने इस तरह कर दिया, ये तो हमारे साथ ना इंसाफी है ना, क्योंकि तो उसका हक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जो कभी कोई इंसान नहीं पूरा कर सकता, चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी आमाल की वजह से मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, सिर्फ अल्लाह की रहमत ही, कोई इंसान नहीं अल्लाह का हक दे सकता। तो इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह अगर तू उनको अजाब दे तो अल्लाह तेरे बंदे, जब तेरे बंदे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह तुझे कोई रोक नहीं सकता, तेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता, तुझसे कोई पूछ नहीं सकता, तेरे पर कोई एतराज नहीं कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम की बेबसी आप अंदाजा करें यहाँ पे, ये कहते हैं और मैं बचा लेंगे उस दिन, वो ये कहेंगे वाकई जुर्म तो अल्लाह इनका इतना बड़ा है, तू अगर अजाब देना चाहे अल्लाह तुझे कौन कुछ, तेरे बंदे हैं, तेरी मखलूक है, ईसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी मखलूक है, वो थोड़ी ये कहेंगे अल्लाह मेरे मुझे तो ये बड़ा मानते थे ना, अल्लाह इनको छोड़ दे क्योंकि इन्होंने मुझे तो बड़ा बड़ी रिस्पेक्ट दी ना, नहीं ना, तेरे बंदे, तेरा तेरी जो कहते हैं ना जिसका माल है उसकी मिल्कियत है, वो जो चाहे अपने माल के साथ करे, कौन तीसरा बंदा कौन होता है कुछ कहने वाला, किसी की बकरी है वो उसको जिबा करे, वो उसको रखे, वो उसको खिलाए नहीं खिलाए, जो मर्जी करे, तीसरा बंदा उठ के कोई कहे तो वो तो कोई जेब भी नहीं देता उसको कि वो कुछ कहे, वो मालिक कहेगा तुम कौन होते कुछ कहने वाला, मेरी चीज है मैं जो मर्जी करूं, अल्लाह तेरे बंदे हैं तू जो मर्जी करेंगे। सोचें आप जो वो रसूल, अरे ये ईसा अलैहि सलाम कोई छोटे पैगंबर नहीं है, छोटे तो कोई भी नहीं, लेकिन ईसा अलैहि सलाम उन पैगंबरों में से जो उलुल अज़्म पैगंबर है, आम पैगंबर नहीं है, उलुल अज़्म बड़े मर्तबे वाले, अल्लाह के यहाँ जो पांच पैगंबर हैं جو اولو العزم کہلاتے ہیں ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور ان کا حال دیکھیں آپ, اور ان کا انداز دیکھیں اللہ کے آگے, ذرا سی بھی کوئی اکڑ نہیں ہے, ذرا سی بھی کوئی اتھارٹی یا پاور کی کوئی دعویٰ نہیں ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اور اگر تو ان کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ تو جو مرضی کرے تو غالب ہے, تیرے پاس ساری اتھارٹی ہے اور تیرے پاس حکمت بھی ہے, تجھے ہی پتا ہے, تیری حکمت سے ہی ہوگا یہ بھی, جو جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے عذاب دے, تو تیرے پاس اختیار ہے, تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اللہ کو واقعی اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اللہ پوچھنے والا. یہ جو باتیں ہیں نا یہاں دنیا میں, میں اللہ سے جا کے یہ پوچھوں گی, میں اللہ سے جا کے نہیں. تو صحیح مسلم کی ایک روایت میں جو آتا ہے نا, ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے ہیں اور آیتیں پڑھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ہے, میرے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا, یعنی ان بتوں نے, ان میں سے جس نے میری پیروی کی وہ تو میری جماعت سے, اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا تھا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اسی بات کو تلاوت کرتے جاتے تھے, ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم. اور روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں زاروں قطار, یعنی اللہ اگر تو ان کو عذاب دے, تیرے بندے ہیں اللہ, تجھے کس نے پکڑنا, کیا ساروں کو ہی اٹھا کے ڈال دے جاننا, اللہ تو اگر ان کو معاف کر دے تو تیرا اختیار ہے. تو ان روتے ہی جا رہے ہیں, روتے ہی جا رہے ہیں, روتے ہی جا رہے ہیں, پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم امتی, کہ میں نہیں اللہ یہ کہتا کہ اللہ تو ان کو بے شک عذاب دے, اللہ میں کہتا ہوں میری امتی, اللہ میں کہتا ہوں میری امتی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں تم. جبرائیل علیہ السلام آئے, یا مسلم میں روایت ہے کہ حالانکہ اللہ جانتا ہے, سب کو بتانا تھا نا, جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے آپ کیوں روتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی, میری امتی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جا کے کہہ دو کہ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے. اللہ اکبر, پتہ نہیں ہم تو اپنے لیے بھی کبھی ڈر کے مارے اس طرح دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. ان کا تو احسان ہی, ہم نہ اتنا بھی چاہے ہم ان کا احسان نہیں دے سکتے, جس طرح انہوں نے ہمارے لیے تڑپ کے دعائیں مانگی, اللہم امتی اللہم امتی, کہ وہ نبی تو یہ کہیں گے لیکن اللہ میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا تم میرے امتیوں کو معاف کر دے. قال اللہ, اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا, اب یہ بس اینڈنگ ہے ساری اس کنورسیشن کا اور بات کا, کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, سارے رسول جمع ہے اور ان کی پیشی ہو رہی ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہ ہے, عیسائیو سمجھ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں, وہ تو بے بس ہے, وہ تو اس دن خود ہاتھ جھٹک دیں گے, وہ تو اس دن کہیں گے کہ اللہ میں نے کیا کہنا, اللہ تیرے بندے ہیں تو جو چاہے کرے ان کے ساتھ. تو یہ ان کو سمجھا کے اب لاسٹ بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بعد, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا, ان کو فائدہ دے گا, سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. آج کیا سچ ہے اس دنیا کی, سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ اس کائنات کا مالک خالق, اس کا رب, اس الہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. یہ توحید جو ہے نا, یہ سب سے بڑا سچ ہے. اور جانتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو आज के दिन कहा जाएगा, ऐलान होगा आज के दिन सच्चों को उनका सच काम आ जाएगा, यानी तौहीद पे जो चलने वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह को एक मान के जिंदगी गुजारी अपनी, उसके सिवा किसी को अपना रब ना बनाया, अपना इलाह ना बनाया, उसके सिवा किसी के आगे ना झुके, आज उनको उनकी सच्चाई काम आ जाएगी। तो सच वैसे भी काम आता है, सच सिर्फ तौहीद में ही नहीं, हर चीज में सच जो है वो अल्लाह को पसंद है, और ये काम आ जाएगा क़यामत के दिन। अब झूठ इंसान को रुसवा कर देगा, क्योंकि एक हदीस से हमें पता चलता है कि इंसान झूठ बोलता जाता है। झूठ भी एक आदत होती है ना, जब इंसान को झूठ की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो हटता नहीं है, फिर वो बेकार बातों पे जिसपे कहीं जरूरत भी नहीं वहां पे भी झूठ ही बोलता रहता है। किसी ने कुछ पूछा तो उसको झूठ बताना है, सच ना बताओ, वो सच बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाना। तो झूठ हर चीज में, झूठ फायदे की है किसी चीज की भी है, आम बात है, को किसी से मुतल्लिक है, उसके अंदर झूठ बोलते जाना, हत्ता कि एक दिन उसका नाम अल्लाह के पास आसमानों में झूठा लिख दिया जाता। सोचें किसी का नाम लिखा हो और उसके आगे लिखा हो झूठी, और इंसान सच बोलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह के पास उसका नाम सच्चों में लिख दिया जाता है। वहां पे भी कोई किताब है ना जिसमें नाम लिखे जाते हैं, वहां पे जाके हम नाम मिटा नहीं सकते कि नहीं नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, तो मिटा के अपना नाम सच्चों की उसमें लिख दो, नहीं पता नहीं हमारा नाम किसने लिखा, हम क्या करते हैं, सच्चों में लिखा होगा कि झूठों में होगा। जब हमारे कोई काम हमने कराना हो, कोई काम बन नहीं रहा हो, तो हम फौरन झूठ पे आ जाते, झट से झूठ बोलते हैं। वो झूठ नहीं, उस दिन सच्चों को सच काम आएगा, सच बात में, सोच में, जिंदगियों के अंदर सच्चाई, सच्ची जिंदगी गुजारे। एक जिंदगी भी होती है बनावटी, झूठी जिंदगी, वो जो आप नहीं है वो बन के दिखाते हैं, वो भी झूठी है। सच्चे रहें, अपने आप से भी सच बोलें, अपने आप को भी झूठ, इंसान अपने आप से भी पता है झूठ बोलता है, वो बातें अपने आप को कह कह के तसल्लियां देता है जो वो नहीं होता या नहीं करता, लेकिन बस अपने आप को कहते रहना ऐसे, इतना झूठ बोलो कि वो भी सच लगने लगे, ये आज हमारा हाल है। ये अपने आप को झूठी तसल्लियां, अपने आप को झूठ, झूठी जिंदगी, झूठे बोल, झूठी सोच, झूठी तसल्लियां, सब चीजों में झूठ है। जब झूठ शुरू होता है ना, तो फिर वो कैरेक्टर ही झूठ के साथ बन जाता है, फिर हर चीज में झूठ होती है। तो इसलिए सच्चाई वाली जिंदगी गुजारनी है, सच्चे होके रहो, मत लोगों की खातिर झूठ बोलो। क्या हमें समझ लेंगे अगर हमने झूठ बोल के इनके सामने कोई वैल्यू भी बना ली, क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन तो अल्लाह को ही मुंह दिखाना है ना। मुझे हमें समझने को बहुत बड़ी चीज भी समझ लेंगे, क्या क्या तमगे मिल जाएंगे, एक दिन उन्होंने भी मिट जाना, हमने भी मिट जाना। तो क्यों झूठ बोल के अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, या अपने आप को झूठ बोल बोल के तसल्लियां देना चाहते हैं, या झूठी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्यों? तो देखिए कितनी ये बड़ी बात है कि उस दिन सच्चों को उनका सच काम आ जाएगा, सच्ची जिंदगी गुजारनी है बस। और ईसाइयों ने तो सारी अकीदा ही झूठ के ऊपर खड़ा हुआ, उनका तो अकीदा है ही, बेस ही झूठ है जिसकी, आगे क्या, वो आगे जितना मर्जी कोई काम करते रहे, जितनी मर्जी भलाई के, इंसानियत के, असल दीनी जी इंसानियत है ये, भाई जब जिस चीज की बेस ही गलत है, झूठ के ऊपर है, वो फिर क्या आगे होगा उसका। और तौहीद पे इंसान कायम रहे, ये है सच, तौहीद को ना कभी छोड़े। لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کے لیے وہ جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ خالدین فیہا ہی کہنا کافی تھا، ابدا کہہ کے کہہ دیا، فکر نہ کرو کبھی بھی نہیں نکلو گے ایسی جنتوں سے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے بڑا انعام تو اللہ کی رضا ہے نا، تو اس لیے پہلے اللہ کی رضا کی بات کی گئی، اللہ راضی ہو گیا ان سے جو سچے ہیں، और वो राजी हो गए उससे। वो राजी किस तरह हो जाएंगे, उनको इतना कुछ अल्लाह अता फरमाएगा कि वो राजी राजी होंगे। उनसे पूछा भी जाएगा अब राजी हो तो कहेंगे हम क्यों ना राजी हैं, अल्लाह ने हमें अजाबों से बचा दिया, हमें ये जन्नत नेमतों भरी दे दी, हमें ये सारी इतना कुछ अता फरमा दिया, हम क्यों ना राजी हैं। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि अभी एक वादा अल्लाह के जिम्मे है जो पूरा होना है, और फिर अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएगा। तो जन्नती तो राजी राजी होंगे, लेकिन पहले अब अल्लाह ताला ने अपनी बात इसलिए की कि अल्लाह का राजी होना ये बहुत बड़ी बात है। इंसानों को तो थोड़ा भी मिल जाए तो फिर भी कह देते हैं अच्छा चलो ठीक है इतना मिल गया मुझे, लेकिन अल्लाह ताला का राजी हो जाना का मतलब ये है कि अल्लाह ने उनके अमल कबूल कर लिए, अल्लाह को पसंद आ गए। और दुनिया में भी इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से हमेशा राजी रहे, उसके फैसलों से राजी रहे, उसके हुक्मों पे राजी रहे, उसके दीन पे राजी रहे। जालिकल फौज العظیم, ये है बड़ी कामयाबी जिसको हासिल हो जाए। अल्लाह तुम हमें भी इस बड़ी कामयाबी का तोहफा अता फरमाना, अल्लाह ही हमें भी ये कामयाबी दिखाना, अल्लाह इनमें हमें भी इन इनाम याफ्ता लोगों में शामिल फरमाना जिनको ये कामयाबी मिलनी। लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्दी वमा फीहिन। अब बोलते ना बड़े बादशाहों वाली बात, एंड में क्या आया, अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमानों की और जमीन की और जो कुछ इसमें है, बादशाह मालिक बा इख्तियार, इनके अंदर जो मर्जी तसर्रुफ करे, जो मर्जी चेंज करे, जैसा मर्जी करे, बादशाहत उसकी है, किसी को मिजाल नहीं कि इसके अंदर कोई बात कह सके, ना किसी फरिश्ते की और ना ही किसी पैगंबर की और ना ही किसी भी इंसान की। वो है बादशाह आसमानों का भी और जमीन का भी और जो कुछ इनमें है। हम इसके बीच में हैं कि नहीं है, या हम कहीं बाहर की मखलूक हैं आसमानों और जमीन के भी बाहर की, तो हमारे पर बादशाहत किसकी है, अल्लाह की। तो मान जाओ ना इस बात को, फिर मानते नहीं है, कहते नहीं मेरे ऊपर किसी और का इख्तियार नहीं, मैं अपनी मर्जी की मालिक खुद, मैं अपनी मालिक खुद, नहीं मेरा मालिक मेरा रब है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज को करने पे कादिर है, जो इंसान की सोच में आ सकती है और जो सोच में नहीं भी आ सकती उस पर भी कादिर है। इतनी प्यारी सूरत पढ़ी है, इसमें अहकामात भी आए हैं, इसमें हलाल और हराम भी आए हैं, इसमें बड़ी तरह से अल्लाह ताला ने हमें बातें समझा दी हैं। जो उसने नाजिल किया है उसकी तरफ से वही आई है, उसकी अहमियत भी समझा दी है। तो इस सूरत को सीखना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ला सकें। अल्लाह ताला हमसे इसका पढ़ना कबूल फरमाए, हमारे लिए अमल करना आसान फरमा दे, इसको हमारे अमल में ले आए अल्लाह ताला। हम सोचते ही ना रह जाएं कि हम सोचते ही रह गए हाँ करेंगे 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 और जाने का वक्त आ गया, ऐसा ना हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम समय ना वादा ना करें, हमने सुन लिया हमने फौरन इताअत करनी शुरू कर दी। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.